नारायण परायण योगी निष्पाप होकर साधना करता नहीं, उसकी साधना होने लगती। जिसको ऐसी योग की दीक्षा नहीं मिलती, वो 12-12 साल 25-25 साल धार्मिक होने का एहसास करते, लेकिन धर्म का प्रसाद उनको नहीं मिलता। धर्म का प्रसाद तो तब शुरू होता है जब ईश्वर कृपा होती है, दीक्षा मिलती है। तब तक थोड़ा एहसास होता है धार्मिक होने का। ऐसे करोड़ों धार्मिक मिलेंगे, धर्म का प्रसाद पाने वाले करोड़ों नहीं होंगे, लाखों भी शायद हों कि नहीं। इसको सहज योग बोलते हैं, कुंडलनी योग बोलते हैं, सिद्ध योग भी बोलते हैं। नाथ संप्रदाय के योगी, उनमें जो सामर्थ्य सिद्धि है वो इसी योग में करते थे। भगवान शंकर भी इसी योग के अनुसार अभी तक समाधि में है। इसका कोई छोर नहीं, जितना आगे बढ़ो उतना बढ़ो, जितना भी जा सको। काकभूषण के दर्शन करने गए भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज, स्वर्ग में उसकी प्रशंसा हुई और काकभूषण से पूछा कि तुम इतने महान चिरंजीवी कैसे बने। काकभूषण ने कहा कि प्राण पान की गति को सम करने का योग मैंने किया। इसमें मुख्य प्रारंभ में प्राणायाम है, दाएं नथुन से श्वास लेकर त्रिबंध करें। त्रिबंध माना मूल बंध, योनि संकोल है, लेट्रिन जाने की इंद्री को संकोचन करना, उसको मूल बंध बोलते हैं। पेट को अंदर करना, उसे उड़ियान बंध कहते हैं। और ठोड़ी को, दाढ़ी को, कंठ को तरफ रखना, उसको बालंबर बंध कहते हैं। इस युक्ति को जो नहीं जानते हैं, वो ध्यान कर भी लें तो उनका सिर ऊपर हो जाए, यहाँ से आगे साधना चलेगी नहीं उनकी। अथवा तो यूँ हो जाए तो भी ऊपर साधना नहीं जाएगी। जैसे टोटी, रबर की टोटी यूँ हो जाए तभी भी प्रेशर नहीं जाएगा पानी का, प्रेशर को रोकने वाली हो जाएगी, और यूँ जाए तो भी रोकने वाली हो जाएगी। सीधी होगी तो पानी चढ़ेगा ऊपर। ऐसे मन प्राण और ओज चेतना ऊपर चढ़ती है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, 64 प्रकार के मेरे गुरुदेव प्राणायाम जानते थे, और वे कहते थे इससे भी और ज्यादा भी होते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे सरल महापुरुष। कोई भी 1-2 प्रकार के प्राणायाम को साध कर साधक शीघ्र सिद्धि के रास्ते चल सकता है। उन प्राणायामों में जितनी देर कुंभक होता है, कायदे से है, बेकायदे नहीं, जल्दबाजी से, युक्ति से, उतना ही उसका सामर्थ्य और साधना की गहराइयां शुरू होती है। इंद्रियों का स्वामी मन और मन का स्वामी प्राण होता है। प्राण की जय से मनोजय हो जाता है, मनोजय हुआ तो इंद्रियों के विकार आपके अधीन हो जाते हैं। जो भी दुख और विनाश है वो इंद्रियों के विकारों से होता है, जो भी पीड़ाएं हैं वह इंद्रियों की बेवकूफी से होती है। और इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, एक अंत इंद्रियां, दूसरी बहिर इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 बहिर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंदर है। इसको करण बोलते संस्कृत भाषा में। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बहिकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। करण बोलते हैं जो पकड़े चीज का ज्ञान करे, साधन जैसे सन सी चमचा तवा ये सब करण है रसोई बनाने के, ऐसे शरीर को चलाने के लिए सब करण है, अहिकरण और अंतःकरण। तो इन सब का संचालक प्राण होता है। तो अभी जो श्वास चलता है साधारण आदमी इसी को प्राण मानता है, लेकिन ये प्राण जो सूक्ष्म होता है तब पता चलता है कि प्राण की कैसी महिमा है। अभी तो हम श्वास लेते देते हैं, प्राण का तो पता ही नहीं। प्राणों का नियमन करना उसको प्राणायाम बोलते हैं, और प्राणायाम करने वाला योगी जानता है कि प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 5 तो प्रसिद्ध हैं, प्राण अपान उदान ज्ञान और समान। ये लेते हैं उसे प्राण कहते हैं, उसे त्यौर जाता उसको अपान कहते हैं, व्यापार से ज्ञान करते हैं। जल को और खाद्य को अलग करता है, खुराक की नली में अगर पानी चला जाता आदमी खांस पड़ता है, पानी पीते समय अगर खुराक की नली में जाता तो आदमी गड़बड़ होता है। दूसरे होते हैं कुर्म आदि, जो आंखों को खोलने और बंद करने में काम करते हैं। कुल मिला के प्राणायाम करने से प्राण अपान ज्ञान उदान समान कुर्म आदि जो है 10 प्रकार के, उनमें शुद्धि होती है, सामर्थ्य आता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि विकसित होती है। विकसित बुद्धि में सार असार का पता चलता है। जैसे संतादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह का पूजन किया और प्रार्थना की, ये बात श्री कृष्ण बता रहे हैं हौधव को, और नारद जी बता रहे हैं वसुदेव को। भगवान ब्रह्मा जी के पास संतादि ऋषियों ने कहा कि पितामह, ये इंद्रियां बलात् संसार के तरफ ले जाते, कितना भी देखो कितना भी सूंघो कितना भी खाओ कितना भी भोगो, लेकिन अंत में देखो तो ठन ठन पाल रह जाता आदमी, संसार में सब बेकार हो जाता। कितना भी घूमा कितना भी खाया, अंत में इन इंद्रियों को तृप्ति नहीं होती, वासना बनी रहती। तो कैसे भगवत प्राप्ति हो? ब्रह्मा जी उस समय किसी जीव के कर्म निर्णय कर्मों से उसके प्रारब्ध का निर्माण करें, कि अनंत अनंत जन्मों के संस्कार के पुंज हैं, तो कौन से संस्कार लेकर इसको कौन सा शरीर दे दिया जाए। ब्रह्मा जी की मट्टी बहिर्मुख थी, कर्ण बहिर्मुख थे, इसलिए ब्रह्मा जी संतादि ऋषियों का उत्तर नहीं दे पाए। औधव फिर ब्रह्मा जी ने मेरा स्मरण किया, तो मैं हंस रूप में वहां प्रकट हुआ। अब ध्यान से सुने कि भगवान हंस रूप में प्रकट हुए, हंस नील शीर को अलग करने वाला प्राणी है, दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है हंस चोंच मारते। दूध पानी मिला के तो दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। नील क्षीर विवेक है हंस के पास, ऐसे नश्वर और शाश्वत का विवेक है जिसके पास उसकी हंस मति होती है। तो भगवान हंस होकर प्रकट हुए और श्वेत रूप है हंस का। जब साधक को सत्वगुण बढ़ता है तो उसके सफेद दर्शन होते हैं, रजोगुण होता है तो लाल और ग्रीन आदि रंग बिरंगी दर्शन होते हैं ध्यान में, और तमोगुण की प्रधानता होती तब अंधकार अंधकार दिखता है ध्यान में, और मन प्राण थोड़ा सूक्ष्म होता है तो साधक आकाश में उड़ता हुआ महसूस करता, देवी देवताओं का दर्शन करता, क्या होने वाला है उसका उसको एहसास होने लगता जब सत्व गुण होता है। उसकी तुच्छ कल्पनाएं शांत होने लगती है और दिव्य भाव के जगत में प्रवेश हो जाता है उसका। ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य देखते हैं कि संसार के दृश्य कुछ नहीं, देवी देवता अप्सरा आदि। स्वर्ग के निधि को जान सकता है, देवताओं की महफिल देख सकता है, दूर दर्शन दूर श्रवण, ऐसा साधक में सामर्थ्य। स्वयं तब हमें तो इतना सामर्थ्य आ गया साधना करने से कि हनुमान जाम बंद अंगत को कहा कि आंखें बंद करो। एक क्षण में उन्होंने आंखें बंद की, दूसरे क्षण में उसको समुद्र किनारे पहुंचा दिया योग बल से। ठान दे सकल सिंधु के तीरा, योग के समान बल नहीं, सांख्य के समान ज्ञान नहीं। तो जिसका सत्वगुण बढ़ता है उसको योग बल का एहसास होने लगता है। प्रसन्नता, निर्णय शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, ये उसके साधक की शुरुआत में आने लगते हैं। संसार में जिस क्षेत्र में होगा वहां उसका व्यक्तित्व तो उभरने लगेगा। ऐसे साधक को कोई भी अनुभूतियां हो तो अपने सदगुरु के सिवा और किसी को न बताए। और जब जब हर्ष उल्लास का प्रसंग आए, कुछ देखकर, कुछ पाकर, कुछ सोचकर, रास्ते जाते समय जब कुछ हर्ष उल्लास का प्रसंग आ जाए, तब भी अपने इष्ट देव गुरुदेव का प्रसाद समझकर मन को गुरु भाव में लगा दे। कभी विषाद का प्रसंग है तो भी गुरुदेव को प्रार्थना कर दे। गुरु हजारों लाखों माइल दूर होते हुए भी मंत्र दीक्षा के समय अपने मंत्र दीक्षा के प्रभाव से गुरु आंशिक रूप में गुरु की वृत्ति हमारे अंतःकरण में जुड़ जाती। गुरु कहते हैं शिष्य को कि बेटा तेरे को दीक्षा मिला है, तू मुझे जल्दी मुक्ति देना। शिष्य घबराता है कि गुरुदेव आपको मैं मुक्ति कैसे दूंगा, आपको मुक्ति मैं कैसे दूंगा। बेटा जब दीक्षा दिया तब मैं तेरे अंतःकरण में थोड़ा प्रतिष्ठित हो गया। तू हंसेगा तो मैं हंसूंगा, तू रोएगा तो मैं रहूंगा। मैं इस शरीर से तो चाहे मुक्त हो जाऊं लेकिन दीक्षा देकर तेरे से जो मेरा संबंध हो गया तो जब तक तू मुक्त नहीं होता तब तक मुझे मुक्ति कहां। तेरे साथ मेरा भाव तादात्म्य हो गया, दिव्य संबंध का तादात्म्य हो गया, तो तू जल्दी मुक्त होने के रास्ते चल। जैसे उत्तम शिक्षक चाहते कि विद्यार्थी पढ़ लिख के पास हो जाए तो पूरा हो गया उसका गुरुकुल, और न पास होता है तो शिक्षक के मत से बोझ जा रहता है। ऐसे ही गुरु ने कहा कि बेटा तू जल्दी से मुक्त हो जाना, नहीं तो तू जो करेगा अच्छा करेगा तो भी मैं अंतःकरण में देखूंगा, और बुरा करेगा तो भी देखूंगा, और अच्छा करेगा तो धन्यवाद और बुरा करेगा तो डांट। मेरे को तेरे चित्त में बैठ कर मेहनत ज्यादा समय मत करवाना, तब अच्छा और बुरा से पार हो जाना। तो शिष्य अच्छा तो करे लेकिन अच्छा करने का अपने में अहम न लाए, बुरे से बचे। फिर भी जब अच्छा करता है करता बनता है तो बुरा भी होता है। तो अच्छा बुरा, अच्छा करे और बुरा न करे, फिर भी उससे बुरा हो जाएगा। तब तक हो जाएगा जब तक अच्छा और बुरा दोनों की सत्यता छोड़कर अपने सत्य स्वरूप में नहीं आता, तब तक उससे कभी न कभी होता ही रहेगा। तो ये विडम्बना का प्रश्न संतादि ऋषियों ने पूछा ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी की मति लगी थी कर्म में। तो जो कुछ करने में है वो राग द्वेष से मति को रंग होता है। राग द्वेष की मति वाला रंग सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सत्य के निर्णय के लिए राग द्वेष रहित अवस्था चाहिए। तो औद्धव में प्रगट हुआ मुझसे ये प्रश्न पूछा गया। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन हो यहाँ प्रगट होने वाले। तो भगवान नारायण ने कहा अगर शरीर की दृष्टि से पूछते तो सब पांच भौतिक पुतला है, चाहे तुम्हारा हमारा सबका जो घर पूछते शरीर से सब एक ही मसाले के, और आत्मा करके पूछते हो तो सब एक चैतन्य है। समझ गए कि ऐसी बात तो भगवान नारायण ही बोल सकते, उन्होंने मेरा आदर पूजन किया। फिर प्रश्न रखा संतादि ऋषियों ने, इंद्रियों को रोकते हैं तो रुकती नहीं, और थोड़ा सा रुकती है तो फिर बहिर्मुख हो जाती। तो भगवान हंसा अवतार ने कहा कि इंद्रियों को और कर्मों को रोकने टोकने में जितना समय लगता है उससे जो लाभ होता है उसकी अपेक्षा ज्यादा लाभ होता है कि स्वरूप का चिंतन करे, परमात्मा चिंतन करे, न विकारों का चिंतन करे, न अच्छा होने का अहंकार का चिंतन करे। अपने में विकार आए, विकारी विचार आया तो उस विचार को पोषण है, गलत विचार को पोषण न दे, और सही विचार से सही कर्म किया तो अपने को सही किया है ऐसा स्मृति करके परिचिन्न न बनाए। सही और गलत ये दोनों मृग मरीचिका है, ऐसा सोचकर आत्मनिष्ठ होता जाए, आत्मभाव में आता जाए, ईश्वरीय चिंतन में आता जाए। अपनी शक्ति को पकड़ने और छोड़ने के झगड़े में मत लगाओ, ये पाना है और ये छोड़ना है, मेरे को शादी नहीं करना है ये आग्रह मत रखो, शादी करना है ये आग्रह मत रखो, मेरे को यहाँ जाना है आग्रह भी मत रखो, और यहाँ नहीं जाना है आग्रह भी मत रखो। तुम आग्रह रखो स्वरूप का, आत्मचिंतन का, तो आत्म हो जाओगे, और आत्मा परमात्मा की एकता हो जाए तो बस सब कुछ हो गया। तो आत्म अनुसंधान करना चाहिए। आत्म अनुसंधान में सफलता देने के लिए छंदोगी उपनिषद में लिखा है कि जिसने प्राणायाम आदि करके मन को शुद्ध किया है वह आत्मज्ञान के प्रसाद में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्राणायाम जब हम श्वास लेते हैं उसको पूरक कहा जाता है, श्वास रोकते हैं उसे कुंभक कहा जाता है, और श्वास छोड़ते हैं तो उससे रेचक कहा जाता है। पूरक कुंभक रेचक, तो कुंभक मन रोकते हैं तो एक तो अंदर श्वास रोकते हैं उसको अंतर कुंभक कहा जाता है, बाहर श्वास रोकते हैं उसको बहिर कुंभक कहा जाता है। तो पांच बार बाहर श्वास रोके आधा आधा मिनट, और पांच सात बार अंदर श्वास रोके आधा आधा मिनट, 40 दिन नियम से अभ्यास करे उसको इतना सारा फायदा होगा कि लगेगा कि मेरे लिए कोई कुछ असंभव नहीं। स्वस्थ रहना असंभव नहीं, प्रसन्न रहना असंभव नहीं, अच्छे अच्छे निर्णय करने की क्षमता आ जाएगी, और अच्छे में अच्छा जो परमात्मा है उसके ज्ञान सुनने की प्यास पैदा हो जाएगी। खाली 40 दिन नियम से करे चमत्कार हो जाएगा, और आधा घंटा रोज बस, आधा घंटा लगेगा 40 दिन करे, एकदम अपने को परिवर्तित मानेगा, गुरु मंत्र लिया है और नियम से पद्मासन या सिद्धासन आसन बिछाकर, गर्म आसन बिछाकर जिससे अर्थिंग न मिले धरती का, ऐसा आसन बिछाकर नियम से प्राणायाम करे त्रिकाल संध्या के समय, 40 दिन के अंदर तो वो कहीं तो कहीं पहुंच जाता है, आधा घंटा ही लगता है। और ये सब साधारण आदमी भी कर सकते हैं, बिजी लोग भी कर सकते हैं। साधारण आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है, साधारण आदमी वो है जो साधारण चीजों में अपनी जिंदगी खपा रहा है। यार हम देखते कोई महिष में जिंदगी खपा रहा है तो कोई मील में खपा रहा है तो कोई 2000 की नौकरी में खपा रहा है तो कोई 5000 की नौकरी में जिंदगी खपा रहा है। जो नौकर होके खप रहे हैं रुपए गिनते गिनते खप रहे हैं, जो साधारण काम में अपना समय खपा रहा है वो सब साधारण जीव होते हैं। जो असाधारण आत्मा परमात्मा के लिए समय लगाता है वो महान होते हैं, महात्मा होते हैं। तो ये काम साधारण आदमी भी कर सकता है, महात्मा तो सहज में करते हैं। तो श्वास लिया उस समय त्रिबंध करे, मूल बंध संन्यास जाने की जगह को सुपुर्द, इससे विकारों पर विजय पाने की शक्ति बढ़ेगी। उड़ान बंद पेट को अंदर रखे, आध्यात्मिक उड़ान करेगा। जालंधर बंद बुद्धि का विकास होगा तेजी से, चमत्कारिक। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। त्रिबंध करके सुबह 5 प्राणायाम करे और उसमें आभ्यंतर कुंभक बाहिर कुंभक, दोपहर को करे ऐसा, शाम को करे सूर्य से। जब आधा मिनट श्वास रोके उस समय गुरु मंत्र का जाप करे, अथवा तो गुरु ने जो दिया है अजपा गायत्री श्वास श्वास की, उसका अनुसंधान करे। अपना फालतू व्यवहार या फालतू बातचीत या फालतू कर्मों में जो समय जाता है, केवल उस पर निगरानी रखकर वही समय साधना में लगा तो भी साक्षात्कार हो सकता है। बिन जरूरी बोलना, बिन जरूरी घूमना, बिन जरूरी खाना, बिन जरूरी समय सब में लगाना, उतना समय अगर बचा ले तो भी परमात्मा का दर्शन हो जाए, आत्मज्ञान हो जाएगा। बिन जरूरी में जो समय जाता है वो जरूरी में जरूरी जो आत्मज्ञान आत्मध्यान आत्मचिंतन और गुरु मंत्र जप उसमें लगा दे तो आदमी का व्यक्तित्व निखर आएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। प्रभावशाली होगा तो फिर बिन जरूरी काम उसके पास नसीब के आएगा, वाहवाही करने वाले आ जाएंगे, मित्र सब ये हो, उसमें सावधान रहे। और ये सावधानी मिलेगी सत्संग से। इसलिए जो जो साधक ऊंचा उठता है त्यों त्यों सतगुरु के सानिध्य की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तो जो समाज में पहले मान नहीं मिलता था वो मिलने लग जाएगा, जो ऑफिस में पहले बॉस लड़ता था वो खुशामद करने लग जाएगा, जो धंधा और कमाई पहले नहीं होती थी सतगुरु ने मंत्र दीक्षा दिया कुछ होने लगा तो फिर वो आदमी उसमें रम जाता है। रम जाता है तो आगे का रास्ते की यात्रा नहीं कर सकता, इसीलिए वो आदमी सावधान रहे। नहीं तो कई वर्ष ऐसे चले जाते, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, कोई पूछता नहीं था, दीक्षा ली, MLA हो गए, मिनिस्टर हो गए और टाइम ही नहीं मिलता भजन करने का, धंधा इतना चलता नहीं था, अब साइंस की दया हो गई, उसी बैठा हो रहा यार तो बहुत अच्छा चलता है। अच्छा तो चला लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दीक्षा लेने के बाद कितने कर्म कट जाते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं, तो आदमी को संसार में थोड़ा सुख सुविधाएं मिलने लगता है। अगर उसी में रम जाता है तो भी साधना छूट जाती है, और कभी कभी उसकी कसौटी के लिए अथवा उसके प्रारब्ध वेग से उसको थोड़ी दुख या असुविधा आती है, तभी भी साधना से उसको श्रद्धा छूट जाती तब छोड़ देता है। तो दुख प्रारब्ध वेग से आता है तो बड़ा दुख आने वाला है, दीक्षा ले लिया तो उस दुख का प्रभाव घट जाता है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध से तो आएगा। जैसे तो दुख में भी साधन न छोड़े, सुख में भी साधन न छोड़े, अपमान में भी साधन न छोड़े, और खूब मान मिले तो भी साधन को कुर्बान करके मान का भिखारी न बने। तो ऐसा साधक आसानी से पहुंचता है। ऐसे कई लोग हैं जो दीक्षा लेने के बाद धन में यश में गाड़ियों में मोटर में कुछ न कुछ सफलता हुई। ऐसा जिसको अनुभव हुआ वो हाथों पर करें। दीक्षा लेने के बाद जो अनुभूति हुई कुछ लाभ हो गए, ऐहिक लौकिक लाभ हो गए, जिसको कोई लाभ हुआ है दीक्षा लेने के बाद हाथों पर करें ठीक से। कितने सारे हाथ देखो, तो इन लौकिक लाभों को पाने के बाद भी लाभ में रमने जाए और आगे बढ़े। एक प्राचीन कथा है कि एक कठियारा था और जंगल में गया दूर तक, एक सन्नाटे में महात्मा थे और महात्मा को श्रद्धा भक्ति से प्रणाम किया। महात्मा कुछ आज्ञा कीजिए, मैंने लकड़ी करने जाता थोड़ा आगे जाया कर। आगे गया तो उसको चंदन का इलाका मिला। अब तो जो बाबुल की लकड़ी में मेहनत थी उससे कम मेहनत में चंदन की लकड़ियां मिलती और ज्यादा पैसे मिलते थे। उसको महात्मा के प्रति श्रद्धा हो गई। पैसे वाला हुआ लेकिन महात्मा के पास कभी कभी आ जाता है। एक दिन पूछ गया तो बाबा जी और क्या आज्ञा है, बोले उससे और आगे जाओ। आगे गए तो महाराज तांबे पीतल की खदान मिली। अब तो सेठ बन रहा है। महात्मा से पूछा बाबा जी अब क्या आज्ञा, बोले और आगे जाओ। कहानी कहती है सत्य को समझाने के लिए। सोने की खदान मिली। अब तो महाराज अरबपति हो गया। महात्मा के पास आता रहा, महाराज जी अब क्या आज्ञा है गुरु महाराज। सेवा चाकरी करता बाबा ने कहा और आगे जाए। रत्नों की खान मिली। बाबा जी से पूछा गया बाबा जी अब क्या आज्ञा है। पहले जो बाबुल की रोट लकड़ियां बेच के खाता था उस समय भले सुविधा कम थी लेकिन शांति और निर्भयता ज्यादा थी। और सोने की खदान और रत्नों की खान मिल गई है, सुविधाएं बहुत है लेकिन अंदर से बाबा जी पहले जैसी निर्भीकता और मस्ती नहीं है, थोड़ा खोखलापन हो गया है। बाबा जी ने कहा ये समझते तो ठीक है और आगे जाओ। आगे गए तो मैं सोने की खदान और कोई एक जीवन मुक्त महात्मा की कुटिया मिली। उसने देखा कि आगे तो ये महात्मा, एक महात्मा ने हीरे मोतियों तक पहुंचा दिया, रत्नों के खान तक पहुंचा दिया और उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पहुंचा हूँ। बाबा जी मैं आपके चरणों में आया हूँ, आगे 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 करके आप तक पहुंचा। बाबा ने कहा मेरे तक पहुंच गया तो बैठ जा और ले ले दीक्षा। मेरे तक पहुंच गया है तो बैठ जा ले ले दीक्षा। दीक्षा का मतलब है जो देने का सामर्थ्य रखते हैं। शाह का मतलब है जो पचाने की श्रद्धा भक्ति रखते हैं। शिष्य का समर्पण और गुरु का सामर्थ्य, शिष्य के करने की तत्परता और गुरु को देने की तत्परता जब मिलता है तब दीक्षा घटती है। उसमें एक भी अगर दोनों में से एक तरफ से अगर कमी हो जाए तो साधना रुक जाती है। गुरु में देने का सामर्थ्य न हो तभी भी शिष्य वहीं रुक जाता है, और शिष्य में चलने की तत्परता नहीं तभी भी शिष्य जितना चला उतना ही तक पहुंचता है। जैसे साइकिल के दो पहिये में से एक पहिया अगर निकल जाए तो दूसरा पहिया क्या करे। दिए से जो दिया जाए आध्यात्मिक किरण आध्यात्मिक शक्ति, अक्षा माना जो पचाया जाए, तो जो लेने की जगह पर है उसे शिष्य कहा जाता है, जो देने की जगह पर है उसको दाता गुरु कहा जाता है। तो शिष्य सत्पात्र हो और गुरु समर्थ हो। शिष्य आगे आगे जाकर जब ऐसे गुरु को प्राप्त होता है तो फिर खदानों से, सुवर्ण की खदानों से या हीरे जवाहरातों से जो चीज नहीं मिलती है वो चीज गुरु दीक्षा से मिलती है। इसीलिए रामायणकार ने कहा कि गुरु बिना भवन निधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होए। दीक्षा देते समय अपनी निगाहों के द्वारा कृपा बरसाए, उसको शांभवी दीक्षा बोलते हैं। मानती दीक्षा उसको बोलते हैं जो वेद का स्टैंडर्ड मंत्र जो है, साधारण आदमी जो है वेद के स्टैंडर्ड मंत्र जो है, तांत्रिक फांत्रिक नहीं, वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र गुरु जी दे उसको मंत्री दीक्षा बोलते हैं। और तीसरी होती है स्पर्श दीक्षा। तो इन तीनों दीक्षा में से कोई भी एक दो दीक्षा जो शिष्य को मिल जाती है तो शिष्य के पास खुलने लगते हैं। नारायण नारायण नारायण। और वो शिष्य ईमानदारी से अगर ईश्वर के रास्ते चलता है तो उसको अनुभूतियां भी होती है। अनुभूतियां न भी हो तो जल्दबाजी न करे, करता रहे, अनुभूतियां कई लोग उसी चक्कर में पड़ते हैं कि मेरे को कुछ अनुभूति है। अब अनुभूति हो तो अनुभूति करने वाला जब कर्ता बना रहता है तो अनुभूति का द्वार खुलता ही नहीं। चलते तो ठीक है लेकिन आंख के पोक से जब चलाते रहे 1 2 3 4 करके तो गड़बड़ हो जाती है। श्वास को जब चलाने लगते तो गड़बड़ होती है। ऐसे ही साधना सहज में होने लगे और एक आदमी को जो अनुभूति होगी वैसे की वैसी दूसरे को नहीं होती। सबके अपने अपने संस्कार है, अपने अपने संस्कार है, अपने अपने साधन भजन करने की कैपेसिटी है, श्रद्धा अपनी अपनी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वह ज्ञान जिससे सारी सृष्टि का संचालन होता है, परमात्मा का ज्ञान ये श्रद्धालु को उपलब्ध होता है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु के लिए श्रद्धा है अटूट, और गुरु और शिष्य के बीच की बात तीसरे को नहीं कही जाती, चाहे भगवान भी आ जाए तो भगवान को भी नहीं कही जाती। ऐसी जिसकी अटूट श्रद्धा है ऐसा आदमी स्पर्श दीक्षा मिले, मांत्रिक दीक्षा मिले, सामूहिक दीक्षा मिले, एक ही दीक्षा से निहाल हो जाता है। राजकुमार ने गुरु दीक्षा लिया, साधना की थोड़ी अनुभूतियां हुई, उसने देखा कि थोड़ी सी दीक्षा लिया घर में रहते हुए इतना सारा अनुभव होता है, अगर संन्यास ले लूंगा और गुरु के चरणों में अर्पित हो जाऊंगा तो न जाने क्या होगा। तो राजकुमार गुरु जी के साथ संन्यास दीक्षा लेकर यात्रा करता था, गांव में से दीक्षा मांग के आए, राजकुमार सन्यासी हो गया, दीक्षा लेकर आता है, गुरु जी को अर्पण करता है। गुरु जी जो खाना चाहते खा लेते, बाकी का उसमें से खारा खट्टा स्वाद निकाल के धो धा के सब्जी चेले को देते हैं। चेला जवान है, अगर चटपटा खाएगा तो विकार ज्यादा होगा, ये बात गुरु समझते थे, इसलिए गुरु उसको खारे खट्टे का स्वाद धो के फिर भोजन दे देते। एक दिन चेला दीक्षा ले आया, थका था पैदल की यात्रा, और गुरु ने दिया, खाया उसने, तब से नींद आ गई। गुरु बुढ़े थे, राजकुमार जवान था, उसको जरा ज्यादा नींद आ गई। गुरु ने देखा कि वट वृक्ष के था पास में जो थड़ है, वट वृक्ष के बखोल में से विषधर निकला है। तो महाराज आपने किया, तो गुरु ने देखा, अपनी शक्ति देकर सांप से पूछा क्यों आया, बोले जो तुम्हारा शिष्य है उसको काटने के लिए आया है, उसी का हमारा वैर है, लेना देना है, इसलिए विधाता ने उसको यहाँ भेजा है। गुरु ने कहा मैं मेरे शिष्य को काटने नहीं दूंगा, तेरे को भस्म कर दूंगा। बोले भले आप कुछ कर दो, दूसरे जन्म में होगा, तीसरे जन्म में होगा, लेना देना तो पूरा होगा ही। गुरु ने कहा नहीं ठहर ठहर, लेना देना अभी पूरा करो मेरी हाजिरी में, गैर हाजिरी में न जाने क्या क्या करे। तो सांप ने कहा तो मैं इसके गले पर डंख मारूंगा और अपना मुंह गीला करूंगा इसके रक्त से, क्योंकि इसने भी हमारे को किसी जन्म में ऐसे ही पकड़ा था। बोले गले पर काटेगा तो मर जाएगा, तो मरे तो मरे, दूसरी जगह कर ले तू। बोले नहीं महाराज ऐसा ही है, हमारा लेना देना, इसके गले के हैं रक्त से मेरा मुंह गीला करूंगा। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, गले के रक्त से, गले के खून से तू मुंह गीला करना चाहता है, ठहर मैं करवा देता हूँ। गुरु जी ने छरा निकाला, शिष्य की छाती पे बैठा और गले का रक्त लेने के लिए, शिष्य ने देखा कि गुरु जी छाती में और हाथ में छुरा, शिष्य इतना निश्चिंत हो गया कि गहरी नींद में खो गया। गुरु ने जो करना था करके बड़ के पत्ते पर रक्त की खून की बूंदे दे दी, नाद चला गया, उसका प्रारब्ध पूरा हो गया, नाद का लेना देना। गुरु ने हंसराज बूटी घोट कर चेले के गले पर बांध दिया, हाथ घुमा दिया, संकल्प कर दिया कि खूब गहरी नींद आओ। नींद तो ऐसी आई चेले को कि रात हो रही है, सूरज ढल गया, ऐसा सोया। गुरु ने देखा कि खतरे की जगह है, शिष्य को सुलाना रात भर ठीक नहीं, शिष्य को जगाया। गुरु शिष्य जाने लगे, जो भूतपूर्व राजकुमार था, सम्राट का बेटा था और सच्चे सम्राट का बेटा हो रहा। सम्राट ने तो नश्वर गादी देनी थी और गुरु सम्राट शाश्वत गादी पे ले जा रहे हैं। लाखों जन्म के बाद बाप मिलकर जो चीज नहीं दे पाए, लाखों जन्म की माताएं जो नहीं दे पाए, लाखों जन्म के मित्र नहीं दे पाए, ऐसी आत्मगादी पर गुरु जी ले जाना चाहते। शिष्य के मन में कोई संदेह रहे ये गुरु को पसंद नहीं होता है। शिष्य को अश्रद्धा रहे, संदेह रहे अथवा भटकीला मन रहे, ये गुरु को पसंद नहीं होता। गुरु ने पूछा कि बेटा कुछ पूछना है तो पूछ ले। गुरु जी कुछ नहीं पूछना। ले बेटा, तेरे गले पे इतना सारा बंदा है और मैं तेरी छाती पे चढ़ गया था छुरा लेकर, तेरी आंखें खुली थी, फिर तूने मेरे को देखकर भी आंखें बंद कर ली। मैं तेरे को बताता हूँ कि तेरा नाग का ऐसा लेना देना था, इसलिए मैंने जरा छुरी का उपयोग करके तेरा रक्त निकाला। तो चेला ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु महाराज, ये मेरे समर्पण की कमी है, इसलिए आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है, आपको कहना पड़ता कि ये कारण था वो कारण था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैंने तो देखा कि मेरा गुरु जी छाती पे बैठे और हाथ में छुरा है, छुरा भी तो मेरे गुरु के हाथ में है। हजारों जन्म तक, लाखों जन्मों से कई बार किसी निमित्त से हम मरे, अभी अगर गुरु के हाथ से भी सिर कट जाए तो घाटा ही क्या है, मुक्ति हो जाएगी। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे बहु सागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु कह रहा उभर आया। गुरु ने कहा बेटा तो कम से कम पूछता तो सही तू कि गुरु जी क्या बांधा है। ले पूछू, मेरा शरीर मेरा नहीं, मैंने दीक्षा ली तब से ये मेरा शरीर गुरु का हो गया है। गुरु अपने हाथ से कुछ भी काम लेते हैं तो किसी से पूछते थोड़े हैं। जैसे गुरु अपनी धोती से जब्बा से कहीं भी टांग दे, कहीं भी काम ले ले, गुरु स्वतंत्र है। ऐसे ही मेरा तन मन मेरी बुद्धि गुरु को अर्पित है। गुरु की मौज है, कहीं भी रख दे, क्या भी कर दे। वो ऐसा शिष्य जो मिलता है तो सदगुरु का पूरा स्नेह और सामर्थ्य रोकने से रुकता नहीं, और सदगुरु ऐसा बरसता है कि शिष्य शिष्य नहीं बचता, गुरु गुरु नहीं बचता है, दोनों अद्वैत का साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे एक कमरे में दो दिए रखो तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश, ऐसे ही दो शरीरों में एक अद्वैत अनुभूति हो जाती है। सा परागति पराकाष्ठा धाम्मी स्थिति ऐसी होती है। तो दीक्षा का मतलब है जो देने का सामर्थ्य रखते हैं, क्षा का मतलब है जो पचाने की योग्यता शिष्यत्व है। तो राजकुमार ऐश आराम से बच गया प्राणायाम ध्यान करने से, और फिर घर छोड़कर जब ईश्वर के रास्ते लगा तो लग पड़ा, कोई संदेह नहीं हुआ। संशय गुरु के व्यवहार में गुरु के प्रति अगर संदेह आता है तो शिष्यत्व की कमी है। गुरु महाराज मेरे शिष्यत्व में कमी न रहे, मेरे गुरु में तो कमी नहीं लेकिन मुझ में कमी है कि मुझे गुरु जी कह रहे हैं कि मैं इस कारण तेरे छाती पे चढ़ा था और इस कारण तेरा खून थोड़ा मैंने निकाल कर नाग को दिया। गुरु जी को भी कहना पड़ता है तो माना मेरे को समर्पण में कुछ कमी है। गुरु को कोई बात समझाने के लिए दाव पेच करने पड़े तो शिष्य के समर्पण पर दया आती है गुरु को। गुरु को कोई क्लेरिफिकेशन देना पड़े कि बेटा इस कारण मैंने तेरे से ऐसा व्यवहार करा, इस कारण ये करा, तो शिष्य अभी बालक है, नन्ना है। अगर शिष्य पूरा शिष्य है तो गुरु को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कहूंगा वो करेगा और जो मेरे बारे में उसे संदेह नहीं होगा। शिष्य जब गुरु को निसंदेह करता है, शिष्य गुरु को निसंदेह करे कि हाँ, शिष्य गुरु को निसंदेह करता है, गुरु को संदेह नहीं रहता कि मैं कुछ भी करूंगा, ये सीधा अर्थ लेगा। वे सीधा अर्थ जानते ही नहीं, टेढ़ा अर्थ लेते और अशांत होते, करा करा खत्म कर देते हैं। फिर गुरु समझा बुझा के उनको पट्टे लगाते, फिर थोड़ा काम करते और जब गुरु उसके दैवी कार्य करने का अवसर मिलता है तो यश तो मिलेगा, वाहवाही तो मिलेगी, और वाहवाही में अहम भर जाता है। फिर गुरुदेव जरा पंचर करते हैं तो उनको गुरु गुरु अच्छे नहीं लगते। फिर भी गुरु ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ते, अपात्र को पात्र बनाते हैं और पात्र को सुपात्र बनाते हैं, सुपात्र को साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे गुरु कभी कभी आते हैं। नारायण अगर पूरा सत शिष्य मिल जाए तो सतगुरु देर नहीं करता, पूरा सुपात्र मिल जाए तो साक्षात्कार कराने में सतगुरु देर नहीं करता। जैसे अर्जुन सुपात्र था तो श्री कृष्ण ने साक्षात्कार युद्ध के मैदान में करा दिया। परीक्षित सुपात्र था तो सुखदेव जी ने सत्संग सुनाते सुनाते साक्षात्कार करा दिया। जनक राजा सुपात्र थे तो अष्टावक्र मुनि ने साक्षात्कार करा दिया। कुपात्र में पात्रता लाते हैं, पात्र में सुपात्रता लाते हैं, और सुपात्र में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। दीक्षा कोई साधारण बात नहीं है। माता पिता के रजवीर से जो शरीर बनता है वो शुद्र होता है, शुद्र चीजों से बना है। दीक्षा देने के बाद वो द्विजात्य होता है, फिर पुण्य कर्म करने का उसको अधिकार होता है, वेद पढ़ने का अधिकार होता है, संध्या गायत्री करने का उसको अधिकार मिलता है। जैसे आईएएस ऑफिसर जब तक उसकी पोस्टिंग नहीं हुई तब तक उसके आईएएस का प्रभाव नहीं दिखेगा, कलेक्टर की पोस्टिंग हो जाए तब उसका प्रभाव दिखेगा, उसकी सही की वैल्यू होगी। उसके पहले खूब सही करो। नौकरी नहीं मिली है, आईएएस पढ़ के आ गए, इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू भी दे के आए, लेकिन पोस्टिंग नहीं हुई और फिर कोई कागजों पे सही करे तो उसकी कोई कीमत नहीं। अब पोस्टिंग हुई है सूरत में और जा रहा है अमेरिका में और वहां जाके सहियां करता है तो क्या वैल्यू होगी? जयराम जी की आईएएस ऑफिसर तो हो आप, लेकिन जहाँ की पोस्टिंग है वहीं तुम्हारे सही का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे जिस केंद्र में स्थिति है वहां के संकल्प का अथवा उसी प्रकार की क्रियाओं का प्रभाव तुम देखोगे। तो दीक्षा एक ब्रह्म हत्या के पाप को भस्म करती है दीक्षा, और दीक्षा एक ही बार ले जाती है। ऐसा नहीं कि चलो हर बार दीक्षा मिलती तो अपन बैठ जाओ, नहीं, पत्नी ने लिया है और पति को दिलान है तो दोनों साथ में बैठे, पति ने लिया है पत्नी को बाकी तो साथ में बैठे, बाकी दोबारा दीक्षा नहीं लिया जाता। तो अब क्या हुआ कि मंत्र दीक्षा मिलेगी, साथ साथ में कुछ नियम मिलेंगे, और नियम चाहे छोटा हो गुरुदत्त नियम को जितना पकड़ रखेगा उतना मन की लगाम हाथ में आ जाएगी। और हम नियम ऐसा नहीं देना चाहते कि तुम न कर सको, जो कर सको ऐसा नियम देते और उस नियम को पकड़ रखो तो उन्नति होगा। छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो जाए छोटा सा नियम पकड़ रखो। जैसे सुबह उठकर एक दो मिनट अच्छा चिंतन किया, ये आदत पड़ जाए, रोज थोड़े प्राणायाम किए, गुरु गीता का पाठ किया, यौन सुरक्षा की किताब का कभी कभी थोड़ा पाठ कर लिया, रात को सोते सोते गुरु मंत्र जप के सो गए, सुबह प्राणायाम किया, ऐसा छोटा मोटा नियम ऐसा तो पकड़ लो कि रोटी न मिले तो चलेगा, लेकिन नियम नहीं हो तो न चले। आपका प्रभाव मन पर हो जाएगा, आपका अधिकार तन पे हो जाएगा। तो एक छोटा सा ये नियम ले लो कि हमारा समय कहीं व्यर्थ तो नहीं जाता, फालतू तो नहीं जाता, फालतू लोगों के साथ ज्यादा समय तो नहीं जाता। अगर समय को बचाने का भी थोड़ी सावधानी का नियम है तब भी आदमी बहुत ऊपर उठ जाता है। जब गुरु दीक्षा मिलती तो कुंडलनी शक्ति जागृत होने की संभावना होती, फिर शरीर में क्रियाएं होने लगती है, नृत्य उभरने लगते हैं, कभी देखा नहीं ऐसे देवी देवताओं के दर्शन होने लगते, गुरु जी के दर्शन होने लगते, लोक लोकांतर के रहस्य खुलने लगते हैं। अकबर जैसा राजा मोतियों की माला रखता है, मीरा ऐसी प्रभावशाली कैसे हुई? मीरा के गुरु थे रोहिदास और वो चमार का बंदा करते थे, लेकिन गुरु को बाहर के धंधे से नहीं मापा जाता है, बाहर के व्यवहार से नहीं मापा जाता है। शिष्य की जितनी जितनी श्रद्धा और ऊंचाई होती है, गुरु का उतना उतना ऊंचापन दिखेगा। मीरा ने कहा है, अड़सठ तीर्थ गुरु जी न चरणे, अड़सठ तीर्थ संतो न चरणे, संतो नी चरण रज उड़ी उड़ी लागे मोहि, अंग बेनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। सहजोबाई हो गई राजस्थान। सहजोबाई ने कहा कि अगर मौका है कि गुरु छोड़ूंगे, भगवान को छोड़ू तो हरि तजी डारू, गुरु न तजूंगी, हरि को छोड़ दूंगी लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हरि का रास्ता तो गुरु ने दिखाया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बल हरि गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। तो दुनिया के सारे संबंध में छोड़ दूंगा लेकिन मेरे गुरु का रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा। जब शिष्य में ऐसी अडुग अटूट श्रद्धा आती है तो गुरु भी सोचते हैं कि मैं सारी विद्या सिद्धियां और सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन शिष्य में तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जितना जितना हमारा गुरु भक्ति का दृढ़ निश्चय होता है उतना उतना ही मार्ग सहज हो जाता है। जितना जितना हमारा मन संशय वाला है और संसार का आकर्षण करता है उतना उतना गुरु भक्ति कम होती है, और जितना गुरु कम भक्ति कम होती उतना उतना ये रहस्य कम खुलते हैं। तो शिष्य सब शिष्य तो है कि गुरु को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शिष्य को जो कहूंगा वो करेगा। शिष्य पर गुरु को भरोसा आए ऐसा शिष्य का आचरण होना चाहिए। आश्चर्य तो यह है, दुर्भाग्य तो यह है कि शिष्य को कोई बात समझाने के लिए गुरु को व्याख्या करना पड़ता है कि बेटा देखो ऐसा करोगे तो ठीक रहेगा, ये करोगे ऐसा करोगे। गुरु को लंबा चौड़ा प्लानिंग बनाकर बात करना पड़ता है। ये शिष्य के समर्पण का दिवाला होता है। और रिजॉर्ट एक सैनिक सिपाही अमलदार हुक्म करता है वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, बॉर्डर पर मर जाते हैं। अरे सैनिक में जितना समर्पण है उतना अगर शिष्य में आ जाए तभी भी बहुत काम हो जाता है। नौकर होता है सैनिक और उसका अमलदार भी नौकर होता है। तो अमलदार का हुक्म पालने में जैसा सैनिक बंधा रहता है, अगर इतना भी गुरु की आज्ञा पालने की तत्परता शिष्य में आए तो वो अमलदार तो मरवा देगा और सरकार उसको सैनिक के परिवार को 100,000-2,00,000 रुपए दे देगी, लेकिन सदगुरु मृतक को अमर बनवा देता है और उसके 21 कुल डाल देता है। गुरु को कभी कभी हाथ जोड़कर कहना पड़े ये शिष्य की कमजोरी के दर्शन है। गुरु को पुचकार के काम लेना पड़े ये शिष्य के समर्पण की कमजोरी है, नहीं तो गुरु को पुचकारना पड़े। बालक को पुचकार के सिखाना पड़ता तो बालक कमजोर है, जयराम जी के समझ। और पुचकारने वाले की करुणा है, पुचकारने वाला ऐसा कभी ना समझे कि मेरी जरूरत है इसलिए मुझे पुचकार रहे हैं, नहीं, फिर भी तेरी जरूरत है क्योंकि तूने पूरी यात्रा नहीं की इसलिए तेरी जरूरत है, जयराम जी की। बाकी तो गुरु को तो गुरु वो होते हैं कि जिनको ईश्वर की भी जरूरत नहीं होती, जयराम जी। सदगुरु वो होते हैं कि जिनको ईश्वर की भी जरूरत नहीं होती, ईश्वर जिनका अपना आपा बना है, ईश्वर को पाने की भी जिनकी जरूरत पूरी हो गई, जरूरत नहीं। सदगुरु से कहा जाता है जिसको ईश्वर की भी जरूरत नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं लेकिन चार पैसे के लोगों की जरूरत रहती है, क्योंकि चार पैसे का लोक संग्रह का काम करना है गुरु को, इसलिए चलो भाई। बजाने वाले की भी जरूरत है और चौकीदार की भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। वो जरूरत गुरु को नहीं है, समाज को है, और समाज के काम आ रहे हो इससे तुम्हारा उन्नति होगा, इसलिए तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी उन्नति के लिए। गुरु को तुम्हारी कृपा की जरूरत नहीं होती। सदगुरु उसे कहा जाता है कि जिसको कोई हेल्प न कर सके वो सदगुरु है, जयराम जी। जिसको किसी के मदद की जरूरत न पड़े उसको सदगुरु कहा जाता है। अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए जिसको किसी की अब जरूरत नहीं है वो सत शिष्य में से सदगुरु बन गया है। और दूसरा वो होता है घमंडी, वो भी बोलता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भीतर से धबकारे कुछ और होते हैं। किसी की जरूरत नहीं सदाम को, फिर भी देखो बकरी जैसा हो गया, किसी भी बात नहीं मानूंगा, फिर भी झक मारने पड़े। वो अहंकार है एक छोर, और दूसरा है आत्म साक्षात्कार दूसरा छोर। उसी खदान से हीरा निकलता है जिस खदान से कोयले निकलते। कोयला एक स्वरूप है अविकसित, और हीरा दूसरा स्वरूप है विकसित। ऐसे अहम अंधकार है अविकसित, और अहम ब्रह्मास्मि प्रकाश है पूरा विकसित। तो जो पूरे विकसित हो गए अपने आप में, उनको शिष्यों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, देवों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। जो पूरे विकसित हो गए उसको ईश्वर की कृपा की जरूरत नहीं। ईश्वर तो उनका अपना आपा हो गया, ब्रह्म हो गए। और ऐसे लोग भी फिर भी छोटे में छोटे व्यक्ति को कुछ करेंगे, प्यार करेंगे, उससे काम लेंगे, ये उनकी करुणा है। गुरु की करुणा और शिष्य का समर्पण, उसको दीक्षा बोलते। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गा वही वेद पूरा। नारायण नारायण
प्रभु तारो जय हो। सुना था कि मीरा प्रेम दीवानी हुई थी, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हैं। सुना था प्रहलाद प्रेम दीवाना हुआ था, लेकिन अभी हम पा रहे हैं वो प्रेम प्रसाद। तो है और क्या, मौजी मौज और क्या, आनंद ही आनंद और क्या, प्रसाद ही प्रसाद और क्या। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी प्रसादी, कुछ ही में पावन हो रहे हैं। ए बोतल के शराबी तुम्हें बोतलें मुबारक हो, हम तो दिल की शराब पी रहे हैं, प्रभु भक्ति की शराब पी रहे हैं। सत्ता की शराब तुझे सत्ता मुबारक हो, धन की शराब तुझे धन मुबारक हो, कुर्सी की शराब तुझे कुर्सी मुबारक हो, लेकिन सदा नहीं टिकेगी। भक्ति की शराब तो यहाँ भी और वहाँ भी बेड़ा पार कर दी है। हर दिन आनंद से पल्लवित हो रहा है और तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, इसलिए तुम रो। तुम्हें प्रेम प्रसाद नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुम उस प्रेम स्वरूप को प्यार करो, वाला में वाल करो, ध्यान करने की कोशिश मत करो, केवल भगवान को स्नेह करते जाओ, केवल हृदय को विकसित प्रसन्न बनाते जाओ। तुम कौन होते हो ध्यान करने वाले, तुम अपने ईगो को छोड़ दो। मीरा की नाई भगवान को और गुरुदेव को स्नेह करते जाओ, अंदर की शक्तियां अपने आप विकसित होगी। गुरुदेव ने वाहल करता जाओ, बस काम करीने बैठ तो 10 वर्ष में ना लागे ध्यान। वाहल करता जाओ, हृदय पूर्वक समर्पित होता जाओ। जय हो महारा इष्ट देव, महारा गुरुदेव, महारा वालुड़ा, महारा कानुड़ा। इन्हें वाहल करता करता तुम्हारा हैया ने हेत ना उभराती बरी दियो। हरिरसना सरोवरे आगा, सरोवर कांठे आवी ने कोई तरसुरे तो पछी क्या तृप्ति पामशे। जहाँ प्यालियां बढ़ रही वहां कोई प्यासा रह जाए तो फिर प्यास कहाँ मिटेगी? ओटावा में, कनाडा में प्यास मिटेगी? ना ना, प्यास तो मिटेगी दिल के आनंद को जगाने से, कुंडली शक्ति भक्ति शक्ति जागृत करने से। जय हो महा वाला। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, तब तक तेरे में श्रद्धा बढ़ती रहे। हे प्रियतम, हे पुरुषोत्तम, हे गुरुदेव, हे आत्मदेव, जय हो महाराज वालुड़ा। संसार के लिए तो कई लोग रोते हंसते हैं, लेकिन उनका कई जन्मों तक रोना हंसना चालू रहता है, लेकिन जो भगवान के विरह में रोते हैं उनके पाप जल जाते हैं, और भगवान को प्रेम करते हंसते हैं उनका आनंद जग जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। ओ माय गॉड, हम तेरे द्वार पर आकर खाली रहे तो फिर दिल कहाँ भरेगा? सरोवर के किनारे आकर खाली रहेंगे तो फिर जन्म जन्म की प्यास हृदय की कहाँ मिटेगी? वो धन से नहीं मिटती, पति से नहीं मिटती, पत्नियों से नहीं मिटती, वह तो परमात्मा के प्रसाद से प्यास मिटती है जन्मों की। जगने दो अपनी सुषुप्त शक्तियों को, जगने दो अपनी आत्म चेतना को। सुना है आत्मा है, लेकिन अभी अनुभव करना है। सुना है भगवान है, लेकिन अब उससे जरा दिल लगाना है। सुना हुआ धर्म तो बहुत है, लेकिन अनुभव के धर्म की जरूरत पड़ती है। अनुभव का धर्म चाहिए। तुम ईगो लेस होते जाओ, बाकी की शाम्भवी दीक्षा का प्रसाद भगवान और संतों के तरफ से पक रहा है। रेडियो और टीवी के वेव्स नहीं दिखते, फिर भी जहाँ जहाँ चैनल और स्टेशन होती है वहाँ का वहाँ रेडियो और टीवी के वेव्स प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे जहाँ श्रद्धा और समर्पण होता है वहाँ संतों की दुआ और भगवान की कृपा के वेव्स हृदय में महसूस होते हैं। ये बाहर की आंखों से देखने की विद्या नहीं, ये तो दिल की आंखों में, दिल की गहराई में अनुभव करने की विद्या है। बाहर कब तक देखोगे? तो अपनी चैनल खोलो, तो अपना स्टेशन खोलो, जय हो मारा वालुड़ा, जय हो मारा कालुड़ा, मारा गुरुदेव तुम्हारो जय हो। आज तक ध्यान करते थे तो लगता नहीं था, और अभी ध्यान करते नहीं हो रहा है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि मेरी चित्त शक्ति जागृत हो, मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो। दिवाकर की प्रार्थना स्वीकार हुई है तो अब मेरा कल्याण हो। दिवाकर ने बेचारे ने खूब प्रार्थना की है, तो अब हम उस दिवाकर की प्रार्थना का भी फायदा ले लें। सच्चे हृदय से प्रार्थना करते जाओ। जय हो महाराज वालुड़ा। मेरी सुषुप्त जीवन शक्ति जागृत हो, मेरा परम मंगल होने को जो कुछ होना है, हे भगवान, हे महारावाल उड़ा।